نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سيقول. پارا نمبر دو. اس پارے کو جس رنگ میں ہم دیکھیں گے وہ ہے امامت کی حقیقت. ہم نے پچھلے پارے میں دو لفظ سنے, ذرا سا لکھیے, یہ ایک میری طرف سے نوٹ ہوگا, کہیں سے آپ کو ملے گا نہیں, میں خود سے بول کے آپ کو بتا رہی ہوں. حضرت آدم علیہ السلام کے قصے میں کیا کہا, وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً, لفظ لکھیے خلیفہ. لیکن ابھی جو ہم نے حصہ پڑھا اس میں حضرت ابراہیم کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا, اِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا. بس یہ دو ٹرمز لکھیے, خلیفہ ورسز امام. پہلے پارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک گول دے دیا کہ بینگ اے ہیومن خلافت اور بینگ اے اسپرچل لیڈر امامت, فرق کیا ہے یہ اس بارے میں دیکھیں گے. میں نے کل بھی آپ کو انٹرو میں بتا دیا تھا کہ سورۃ بقرہ کو سورۃ الامتین کہتے ہیں, دو امتوں کی سورت. پہلا پارہ جو ہم پڑھ چکے اس کا سم اپ لیجئے, یہ بنی اسرائیل سے متعلق تھا. دس رکوع ہم نے پڑھے, یا بنی اسرائیل سے بات شروع ہو کے یا بنی اسرائیل پہ پوری ہوئی. تین دفعہ اللہ نے ان کے اوپر حجت تمام کی کہ وہ بنی اسرائیلیوں, اس شخص کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان جاؤ, بچ جاؤ گے, یہ وہی ہے جس کا تم انتظار کر رہے تھے. عام لوگ تو مان ہی جاتے, لیکن وہ دین کی گدیوں پہ بیٹھے ہوئے لوگ, انہوں نے شکوک و شبہات ڈال دیے کہ نہ 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 یہ نہیں ہو سکتا وہ نہیں, انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کر دیا لوگوں کو. نتیجہ کیا نکلا, محروم رہے, خود بھی رہے, خود تو ڈوبے دوسروں کو بھی ڈبو دیا. اگر مدینہ کی بستی میں رہنے والے وہ مٹھی بھر یہود نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آتے ہیں, تو آج اس پوری دنیا, پورے گلوب کا نقشہ مختلف ہوتا. اور اگر یہ قوم آج بھی اسلام پہ آ جائے تو اسلام چاند بن کے پوری دنیا پہ چمکے گا, یہ ہم جیسے نکمے مسلمانوں سے نہیں پھیل رہا. ان کے پاس اسلام آ جاتا, جو 500 سال کی پلاننگ کرتے ہیں, جو آرگنائزڈ ہیں, جن کو اللہ نے ٹیلنٹ دیا ہے, اسکلڈ ہیں. یہود بڑے آرگنائز لوگ ہیں, بہت ٹیلنٹڈ ہیں, فوکسڈ ہیں, مٹھی بھر ہے اور پوری دنیا پہ حکومت کر رہے ہیں. اگر آپ اسلام ان کو دے دیں, پھر دیکھیے دنیا میں کیا لینڈ کروزر کا نام ہے, اور کیا ایپل فون کا نام ہے, اور کیا مرسڈیز کا نام ہے, اور کیا برٹش بینک ہے, جنہوں نے پوری دنیا کو دنیاوی طور پہ اتنا کچھ دے دیا, وہ دین بھی لے جاتے. لیکن تعصب, میں تو نہیں مانتی, میں تو ان سے جنتی ہوں, میں تو ان کے ساتھ ہوں, میں تو ان کو جانتی ہوں, میں اس فرقے سے, میں اس جماعت سے, اس انسٹیٹیوٹ سے ہوں, ان چیزوں نے آ کر ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خیر سے فائدہ لینے سے روک دیا. اللہ تعالیٰ نے ان کو جو امامت کا حکم دیا تھا, دعوت دی, جب بنی اسرائیل اس پہ پوری نہ اتری. اور اللہ نے پارے کین پہ ابراہیم کا ذکر بھی اسی لیے کیا, کامن پرسنالٹی تھی مسلمس کی بھی, جیوس کی بھی, مشرقین مکہ اور سب کے جد امجد تھے, باپ تھے سب کے. اب جو پارا ہم شروع کرنے لگے ہیں, سمجھ لیں پورے کا پورا پارا امت مسلمہ کا ہے. اللہ نے امامت کا تاج بنی اسرائیل سے لے کر بنی اسماعیل کو دے دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بنی اسماعیل سے آنا سمبولیکلی, نشانی کے طور پر دلیل تھی کہ بنی اسرائیل فیل ہو چکے. ان کو ہم نے مثال دے رہی ہوں, ووٹ دے کر چنا تھا, 5 سال کا عرصہ بھی پورا کر لیا, کچھ بھی نہیں کیا, اب اٹھا دو ان کو, نکال دو عدم اعتماد کا ووٹ دے کر ان کو اٹھا دو. اور اب اس وقت امامت امت مسلمہ کو ملنے لگی ہے. پورے بارے میں امت مسلمہ کیا ہے, کیا کرے گی, یہ سب ہے. یعنی یہ بڑا پروفاؤنڈ قسم کا پارٹ ہے سورہ بقرہ کا, کہ جس میں آپ ایک قسم کا پورا اسلام گو تھرو کریں گے, ٹھیک ہے. خاص طور پہ آیت بر پہ جب آئیں گے 177 تو اس میں آپ کو ملے گا. اس میں آپ نے جو چیزیں نوٹ کرنی ہے, اس کو علامہ اقبال کی ایک پوئم ہے, میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. انشاءاللہ بیچ بیچ میں آپ کو یہ بتاتی بھی رہوں گی کہ اس سے کیا مراد ہے. کہتے ہیں کہ تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے, حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے. کہتے ہیں کہ تم نے مجھ سے پوچھا کہ امامت کیا ہوتی ہے, तो मैं दुआ करता हूँ कि जिस तरह अल्लाह ने मेरे दिल पे राज खोले हैं ना, अल्लाह तुम्हारे भी दिल पे राज खोल दे। है वही तेरे ज़माने का इमाम बरहक, जो तुझे हाजिर व मौजूद से बेजार करे। ये किया था अल्लाह के नबी ने और सहाबा जैसी उम्मत तैयार हुई थी। यानी इमाम वो होता है, लीडर वो होता है, मेंटोर वो होता है जो सबसे बेनियाज करवा दे आपको और अल्लाह का नियाजमंद करते हैं। सिर्फ अल्लाह से मांगना, सिर्फ अल्लाह पे नजरें रखनी। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु इस बारे की शख्सियत है। उनके दौर में कहत पड़ गया, बहुत कोशिश की लेकिन खुशकसाली खत्म ना हुई। दिल में ख्याल आया कि सात नॉन मुस्लिम मुल्क है, उससे मदद मांग लेते हैं। खत लिखा कि हमें मदद की ज़रूरत है, गैर मुस्लिम तो चाहते ही है कि ये अल्लाह से नहीं मांगे हमसे मांगे, ताकि ये अल्लाह के आगे ना झुके हमारे आगे झुके, हमारी शरायत माने। उन्होंने बड़ा सा काफ़िला भेज दिया। कहते हैं कि उस काफ़िले का एक ऊँट उनके मुल्क में और आखिरी ऊँट मदीना पहुँच गया। इतना बड़ा काफ़िला था, फिर भी बुरी नहीं पड़ी। चंद दिन के बाद सब ख़त्म। एक बदरी साहबी जो उस वक़्त तक हयात थे, उनके ख्वाब में नबी सल्लम आए, कहा ये उमर को क्या हो गया। आज उमर की भी कहानी आप सुने थोड़ी सी, उमर को क्या हो गया। उन्होंने आकर अगले दिन ख्वाब हज़रत उमर को सुना दिया। हज़रत उमर को फिक्र लग गई, अपने ईमान की फिक्र लग गई। मजलिसे शुरा बुला ली, सब शहर के उलमा और फुकहा और मुफ्ती, कहा ढूंढो मुझसे गलती क्या हुई है। जब गौर किया तो उन्होंने कहा कि उमर, आपने सलातुल इस्तिस्का नहीं पढ़ी, अल्लाह से मदद नहीं मांगी और एक गैर मुस्लिम हुक्मरान से मदद मांग ली। कहा हाँ ये तो हो गया, चलो कल सब खुले मैदानों में जाकर सलातुल इस्तिस्का पढ़ते हैं। और फिर वही हुआ, अभी नमाज पढ़ के उठे भी नहीं, एक कब्र आसमान पे आया, फिर जलथल हुई, इतनी बारिश हुई कि दो चार दिनों में मदीने का कहत ख़त्म हो गया। ये है वही तेरे ज़माने का इमाम बरहक, जो तुझे हाजिर व मौजूद से बेजार करे। ये है खुदी का वो मुकाम कि जिस पे बंदा आ जाए तो अल्लाह उसको शर्मिंदा नहीं करता। ये वो है मुकाम जिस पे आने वाले को अल्लाह सच्चा कर देता, चाहे वो झूठ ही कह दे, जिसकी कसम भी अल्लाह पूरी कर देता, जिसके मुंह से निकली बात को अल्लाह कहता है फरिश्तों ये मेरा बंदा, मैंने इसकी इज्जत रखनी है। यूनुस की तरह अलैहिस्सलाम, अल्लाह ने अजाब नहीं था लाना, ला के दिखा दिया कि मेरा यूनुस ना झूठा पड़ जाए। कुछ लोग अल्लाह के नाम पे कसम खा ले, अल्लाह उनकी कसम पूरी करता है, अल्लाह उनको झूठा नहीं करता। और ये मुकाम खुदी है, ये है वो मुकाम जिस पे अगर आज हम मुसलमान, 2 बिलियन मुसलमान सारे नहीं भी ना, तो अक्सरियत अगर इनमें इस इमाम पे आ जाए, इस मुकाम पे आ जाए, मुसलमान आज भी वर्ल्ड लीडर, आज भी उम्मत मुस्लिमा सारी दुनिया पे राज करे। मौत के आईने में तुझको दिखा कर रुखे दोस्त, जिंदगी तेरे लिए और भी दुश्वार करे। आप मौत को बुरा कहते हैं? मोमिन को मौत एक आईना दिखता है जिसके पीछे से अब अपने दोस्त यानी अल्लाह से मुलाकात होगी। ये हम मुसलमान मरने से डरते हैं, सहाबा तो आंखों में आंखें डालते थे मौत की, उनके खिलाफ दुश्मन कहा करते थे इनको कैसे डराएं, ये तो मौत से डरते ही नहीं, ये तो और उछलते हुए कूदते मैदान जंग में जाते हैं कि हम दोस्त को मिलने जा रहे हैं। यानी जिसको अल्लाह से प्यार होता है उसकी ज़िंदगी दुश्वार है, क्यों, कब ख़त्म होगी और मैं जाऊँ अपने दोस्त को मिलूँ। दे के सासे जियाँ तेरा लहू गरमा दे, फ़क्र की शान चढ़ा कर तुझे तलवार कर दे। अल्लाह हमें ऐसे लीडर दे जो हमें हमारे एहसास ज़ियाँ बताएं। यू आर इन लॉस, यू आर गोइंग टू बी बैंकरप्टेड, तुम ख़त्म हो रहे हो। और फ़क्र गुरबत, शान कहते हैं तलवार के ऊपर जहर चढ़ाते थे कि अगर दुश्मन तलवार के वार से बच भी गया ना, तो उस जहर का कुछ असर उसके अंदर चला जाए। कहते हैं कि अच्छा लीडर अपनी कौम को ऐश कोश नहीं बनाता, उसको फ़क्र की शान पे चढ़ाता है। फितना मिल्लत बैजा है इमामत उसकी, मुसलमान को सलातीन का परस्तार करे। ऐसा लीडर उम्मत मुस्लिमा के लिए एक फितना है जो मुसलमानों को बादशाहों के दरबारों पे खड़ा करता है। आज क्या हो रहा है, एड नहीं मिल रही, फलां 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 नाम मैं क्या लूँ यहाँ बैठकर, मदद लेने के लिए रोते हो। एक जगह एक सिस्टर थी तो वो किसी काम से बैंक में गई तो वहाँ एक बंदा मिठाई बांट रहा था छोटे छोटे डब्बों में, जो आ रहा है उसको दे रहा है, जो आ रहा है उसको दे रहा है, जो आ रहा है दे रहा है। कहने लगी कि मैंने वहाँ खड़े किसी से पूछा कि इनको क्या हुआ, भाई देखो ना बेटा हुआ है, बच्चा हुआ है, बच्चे की शादी है, कुछ मिला। कहती इसका बैंक में से लोन पास हो गया, तो इसने नियत की है कि मैं इतने दिन यहाँ आने वाले हर एक को मिठाई बांटूंगा। मांगते हो, गुलाम हो, भिखारी हो, अल्लाह के माँ सिवा से मांगते हो, कर्जों पे जीना चाहते हो, तो तुम्हारे साथ तो इससे भी बुरा होगा। फिर अभी जब तक हम अल्लाह के नियाजमंद नहीं होंगे, सबकी मदद के कासे फेंक दीजिए उनके आगे, हाथ ऊपर कर ले, मैं किसी से 1 रुपया नहीं चाहिए, देखिए आपके मुल्क का नसीब कहाँ जागता है। ऐसे थे हजरत उमर। अजमत सहाबा पे अगर जाएं तो आज सहाबा में से हजरत उमर फारूक हमारे इस पारे की शख्सियत है। हजरत उमर की जितनी भी खूबियां बयान करूँ ना, उसमें से अगर एक खूबी जो हदीस गवाह है, जिसकी सबसे मशहूर हदीस, हर हदीस की किताब में अमूमन पहली हदीस इन्नमल आमालु बिन्नियात सुनी हुई है, सबको आती होगी। आप पता कि ये खबरे वाहिद है, सिर्फ हजरत उमर इसके रावी हैं। हदीस पे आपके लिए लिख दी, बुखारी की रिवायत है 6689। अन उमर इब्न अल खत्ताब रदी अल्लाह अन्हु यकूल समेत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यकूल इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल का दारोमदार नियतों पे है। व इन्नमा लिमरी मानवा, हर आदमी के लिए वही है जिसकी उसने नियत की। फमन कानत हिजरत हु इलल्लाहि व रसूलिही फहिजरत हु इलल्लाहि व रसूलिही, बस जिसकी हिजरत होगी अल्लाह और उसके रसूल की तरफ तो उसकी हिजरत है अल्लाह और उसके रसूल के लिए। वमन कानत हिजरत हु इला दुनिया युसीबुहा, और जिसकी हिजरत दुनिया पाने के लिए होगी तो दुनिया तो उसको मिलने वाली है। अविमरातिन या तज़व्वुजुहा, या किसी औरत से निकाह करने के लिए। फहिजरतुहु इला मा हाजरा इलैह, तो उसकी हिजरत उसी लिए होगी, यानी जिस तरह का कोई काम करोगे, जिस नियत से करोगे, उसी से मिलेगा। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हो उन लोगों में से थे कि जिनके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पे फरमाया, सब लोगों से बेहतर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अबू बकर और उनके बाद उमर हैं। ये इब्ने माजा की रिवायत है 106, और इब्ने माजा ही की 104 में है, अल्लाह के नबी ने फरमाया जिससे अल्लाह पहले मुसाफहा करेगा यानी क़यामत के दिन, वो उमर हैं, और पहले जिन पर सलाम करेगा वो उमर हैं, और पहले जिनका हाथ पकड़कर दाखिल करेगा वो वही हैं। इतनी शान है। हज़रत उमर जन्नत के सरदार हैं, कैसे? इब्ने माजा ही की रिवायत 95 और तिर्मिज़ी 366, फिर 6 और 3665। अल्लाह के नबी ने फरमाया अबू बकर और उमर दोनों जन्नत के उधेड़ उम्र लोगों के सरदार हैं, यानी बड़े लोग, ख्वाह वो अगले हों या पिछले, अम्बिया और मुरसलीन के सिवा, और ये जब तक जिंदा रहें, ए अली, इनको इसकी खबर ना देना। यानी ये खसाइस थे इन लोगों के। और इसी तरह से जन्नत की बशारत मिलती है, बड़ी तवील रिवायत है, बस इतना सुन लीजिए कि अल्लाह के नबी के सहाबी को भी दुनिया में जन्नत की खुशखबरी मिली थी। बुखारी की रिवायत 3693, जाकर ख़ुद भी पढ़ लीजिए। इसका खुलासा यह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुशखबरी दी थी कि पहले अबू बकर के लिए दरवाज़ा खुलेगा, फिर उसके बाद हज़रत उमर के लिए, फिर किसी एक तीसरे के लिए, और मसाइब और आजमाइशों के बाद जो दुनिया में इनको मिलेंगी, हज़रत उस्मान की तरफ इशारा था, फरमाया कि इसके बाद फिर इनको जन्नत में दाखिल कर दिया जाएगा। दीन में कोशिश करने वाले सखी शख्स थे हज़रत उमर। इब्ने उमर इनके बेटे थे। किसी ने कहा कि अपने बाप के हालात तो बताओ, यानी आपके अब्बा कैसे थे? कहते मैंने इनको बता दिया। फिर इन्होंने कहा कि अल्लाह के नबी के बाद मैंने किसी शख्स को दीन में इतनी ज़्यादा कोशिश करने वाला और इतना ज़्यादा सखी नहीं देखा। और ये सारी खूबियाँ हज़रत उमर पर ख़त्म हो गईं। बुखारी 3689। कुछ करके इनको मिला है। इट्स नॉट बाय चांस, इत्तफाकात के साथ ये रदी अल्लाह अन्हु नहीं बन गए। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि मेरी उम्मत में फरिश्ते उमर से कलाम करते हैं। अबू हुरैरा रावी हैं, आपने फरमाया तुम में से पहली उम्मतों में मुहद्दस होते थे, और अगर मेरी उम्मत में ऐसा कोई शख्स है तो वो उमर है। साहबा ने पूछा कि मुहद्दस से क्या मुराद, कौन? फरमाया तुम से पहले बनी इसराइल की उम्मतों में कुछ लोग ऐसे हुआ करते थे कि नबी नहीं होते थे वो, इसके बावजूद फरिश्ते उनसे कलाम करते थे, और अगर मेरी उम्मत में कोई ऐसा शख्स हो सकता है तो वो उमर है। समझ ना, हदीस बात होता है ना, तो उसी से ये लफ्ज़। हज़रत उमर का महल नबी ने जन्नत में देखा। कहते हैं वहाँ एक औरत थी, मैंने पूछा ये महल किसका है, लोगों ने कहा कि उमर का महल है। मेरे दिल में आया कि मैं अंदर देखूं भला उमर को क्या मिला सारी ज़िंदगी की नेकियों के बाद। फिर मुझे उमर की गैरत याद आ गई, मैं अंदर दाखिल नहीं हुआ। अल्लाह के नबी ने जब ये बात हज़रत उमर को सुनाई तो हज़रत उमर रो पड़े कि अल्लाह के नबी क्या मैं आपसे गैरत करूँगा। ये बुखारी 3679, मुस्लिम 6179 और 6198 है। यानी हज़रत उमर का महल भी दुनिया में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखा दिया गया था। और इसी तरह हज़रत बिलाल के बारे में भी आता है कि आपने कहा कि तुम जन्नत में मेरे से आगे चल पड़े थे, और उसकी भी बहुत खूबसूरत डिस्क्रिप्शन है और उनके साथ कहा गया। फिर इसी तरह बुलंद दर्जों वाले लोगों में हज़रत उमर और अबू बकर हैं। क्या खूब रहे, हदीस का लफ्ज़ पता क्या है, वह नमा। मैं ख़ुद भी ये पढ़ते हुए सोच रही हूँ कि ख़त्म हो गई ना। देखिए 63 ईयर्स की एज थी अबू बकर की, उम्र भी इसी के करीब की उम्र थी, और आज देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुजरे हुए कितने साल हो गए, तकरीबन 1450 साल तो अभी तक हो गए, और पता नहीं अभी आगे कितना। अल्लाह ने इनके जो दर्जे रखे हुए हैं, जो इनको जन्नतों में वहाँ मुकाम मिल रहा है, ये आज भी है। तो आपके मेरे लिए मोटिवेशन क्या है, थोड़ी सी ज़िंदगी में कुछ कर जाए। आज से आप अपने अंदर एक एनर्जी महसूस करें, आइडियलाइज़ कीजिए अबू बकर को, अपने बेटों के नाम भी अबू बकर उमर रखिए, साथ उनको वैसा बनाए, खुद भी बने। हम सारा जोर अपने बच्चों पे लगाते हैं, नहीं, इंशाल्लाह हमने खुद भी कोशिश करनी है। और हज़रत उमर के बारे में आता है कि ये हुस्ने तदबीर से काम करते थे। कुछ लोग बड़े सेंसफुल होते हैं, इशारा समझ जाते हैं, मजबूत कुव्वत के साथ ये काम करते थे। अल्लाह ने ख्वाब में एक दफ़ा दिखाया था कि डोल से पानी निकाल रहे हैं, यानी कुएं में से, और हज़रत उमर थे वो, यानी हज़रत उमर बड़ी समझ बूझ वाले थे। और इसी तरह आपने अपनी ज़िंदगी में फरमाया था कि मेरे बाद इक्तदा करो तो इनकी करना, और इशारा अबू बकर और उमर की तरफ था। ये भी तिरमिज़ी की रिवायत है 3664। अल्लाह ताला आपसे मुझसे राज़ी हो और इन लोगों जैसे काम करने की हमें तौफीक दे। और ख़ास तौर पर उमर का नाम आज क्यों लिया, एक तो तरतीब से ही उनकी बनती है, लेकिन मैंने इस बारे के मौजू के साथ, इमामत के साथ, हज़रत उमर का दौर 10 साल का था, उम्मत मुस्लिमा की खुशहाली का दौर था। इस वक्त जितने भी साउंड सिस्टम्स बने हुए हैं दुनिया में, हज़रत उमर उसके बानी थे। और हज़रत उमर ने जो अपना फलाही हुकूमत का कॉन्सेप्ट दिया था, आज का ब्रिटिश, बरतानिया, यूके, यूरोप, लंदन कह लें, और भी कह लें कुछ, सब उस पर बेस्ड है। उनके अपनी किताबों में लिखा है कि हमने ये सारा जो एक सोशल वेलफेयर का, स्टेट का जो हमने नक्शा लिया ना, ये हज़रत उमर से लिया। इतने खूबसूरत तरीके से इन्होंने दुनिया को अल्लाह की नेमतें दी थी, जिसके बाद फिर क्या कुछ हुआ, ये सब कुछ हम इंशाल्लाह इनके बारे में पढ़ते रहेंगे। हज़रत उमर की शहादत जब हुई तो हज़रत अली ने उनके लिए रहमत की दुआ की। इब्ने अब्बास कहते हैं कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब को जब तख्त पे रखा गया तो लोग इनके इर्द गिर्द जमा हो गए और इनके लिए दुआ की और इनकी तारीफ़ करने लगे, और इनका जनाजा उठाने से पहले इनकी नमाज जनाजा पढ़ रहे थे। मैं भी इन्हीं लोगों में था। इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि मैं नहीं घबराया सिवाय एक आदमी से कि जिसने मेरे पीछे से आकर मेरा कंधा पकड़ा। मैंने इसकी तरफ़ देखा तो वो अली थे रदी अल्लाहु अन्हु। तो हज़रत अली ने हज़रत उमर के लिए रहम की दुआ फरमाई और फरमाया, ऐ उमर, आपने अपने पीछे कोई ऐसा आदमी नहीं छोड़ा जिसके आमाल ऐसे हों कि इन आमाल पर अल्लाह ताला से मुलाकात करना पसंद हो आपसे ज़्यादा, और अल्लाह की कसम मुझे यकीन है कि अल्लाह ताला आपको अपने दोनों साथियों का साथ फरमाएगा। इसकी वजह यह है कि मैं ज़्यादातर रसूलुल्लाह से सुना करता था कि आप फरमाते थे कि मैं आया, अबू बकर और उमर आए, मैं अंदर दाखिल हुआ और अबू बकर और उमर अंदर दाखिल हुए, मैं निकला और अबू बकर और उमर भी निकले। मैं उम्मीद करता हूँ और मुझे यकीन है कि अल्लाह ताला आपको इन दोनों के साथ यानी अबू बकर और नबी सल्लम के साथ कर दे। ये बुखारी की रिवायत है 3685 और मुस्लिम 6187। और जो अबू बकर और उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा से मोहब्बत नहीं करता वो नबी सल्लम से मोहब्बत नहीं करता। ये तिर्मिज़ी की रिवायत 3685 है, मोहम्मद बिन सीरी से ये बात मिलती है। तो बहरहाल बोलिए रदी अल्लाहु अन्हु, अल्लाह इनसे राज़ी हुआ। आइए ज़रा हम इस पारे को अब देखते हैं कि इसमें हमारे लिए क्या। आज की दुआ भी हज़रत उमर ही की दुआओं में से एक दुआ है, एक दुआ मांगा करते थे। और हदीस हमें मिलती है मुसन्नफ़ इब्न अबी शैबा से 5179, शद्दाद बिन औस इसके रावी हैं। कहते हैं कि क़ाल उमर इब्न अल खत्ताब रदी अल्लाहु अन्हु, अल्लाहुम्मा इन्नी दईफ़ुन फ़क़व्विनी व इन्नी शदीदुन फ़लैजिनी व इन्नी बखीलुन फ़सख़िनी। मेरा ख्याल है हम में से बहुत सारों को इस दुआ की ज़रूरत है अपने लिए। ऐ अल्लाह मैं कमज़ोर हूँ, मुझे कुव्वत अता फ़रमा। ज़ईफ़ का लफ्ज़ उर्दू में हम बोलते हैं अल्लाहुम्मा इन्नी दईफ़ुन फ़क़व्विनी व इन्नी शदीदुन, मेरे में सख्ती है, फ़लैजिनी फिर मुझे नरम कर दे, वइन्नी बखीलुन मुझ में बखीली है, फसखीनी मुझे सखी बना दे। तो ये दुआ अल्लाह मेरे हक़ में और आपकी आपके हक़ में भी कबूल करे।